अंकुर जनना भव बीजाकुर जनना रागाद्याशय मुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरोजिनो वा नमस्तस्मै हरोजिनो वा नमस्तस्मै यो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की दस लक्षण धर्म की आचार्य गुरुवर विद्या सागर मुनि महाराज की। पहले दिन जब हम बैठे थे तब सीखा था कि जागने का नाम धर्म। ये मालूम पड़ जाए कि सपना क्या है और सत्य क्या है तो हमने एक परिभाषा बना ली थी कि जागने का नाम धर्म। दूसरे दिन बैठे हमने कहा कि जागते रहने का नाम है, हमेशा जागते रहने का नाम है। फिर कभी कहा कि क्रोध से वापसी का नाम धर्म। किसी दिन बैठे तो कहा कि अहंकार नहीं करने का नाम है। एक दिन तो हमने ये भी कहा कि छल कपट नहीं करना, सरल हो जाना, यही धर्म। फिर पवित्रता की बात आई तो हमने कहा कि पवित्र होना, शुचिता प्राप्त कर लेना, ये भी धर्म। आपने लेकिन कभी नहीं पूछा कि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। मगर कल हमारे मन में प्रश्न आया कि आखिर कहने वाला कहना क्या चाह रहा है। तो भैया मैं तो यही कहना चाहता हूं कि धर्म कहां नहीं जाता। तो प्रश्न कर सकते हो, करना चाहिए कि जब कहा नहीं जाता तो कह काय करो। और जो कुछ कहा जा रहा है क्या वो धर्म नहीं है? और अगर धर्म नहीं है तो है क्या? बस जरा सी आज के रोज किसी बात पर गौर कर देनी है कि जो है वो सिर्फ है, उसे कहा नहीं जा सकता। जो कहा जाता है उसमें बहुत सारा ऐसा छूट जाता है जिसको कहा नहीं जा सकता। जो नहीं कहा जा सकता वो भी धर्म है और जो कहा जा सकता है वो भी है। सत्य सापेक्ष है, जिंदगी का सब ऐसा ही है। बहुत बेबूद लगती है कई बार ये जिंदगी। जितनी जितनी समझने की कोशिश करो उतना उतना अपनी नासमझी से तरस आने लगता है। हाँ, जितनी जितनी समझने की कोशिश करो उतनी उतनी अपनी नासमझी पे तरस आने लगता है। लेकिन हम लोग तो अपनी नासमझी पे तरस नहीं करते, हम तो यही कहते कि हम जानकार हो गए। और कहा भी तो था आपने कि जाग जाने का नाम धर्म है। हम जाग तो गए, हमने जान लिया कि क्या कैसा होता है, सपना क्या है और सत्य क्या है। और एक दिन तो आपने यहाँ तक कहा था कि एक कदम चलना यानी मंजिल पा लेना, मंजिल के लिए एक कदम काफी है। हाँ कहा तो, और आज तो उससे भी कुछ ज्यादा ही कह देना है। आज तो ये कह देना है कि एक कदम चल देने से कुछ नहीं होने वाला, सत्य को अकेले जान लेने से कुछ नहीं होने वाला, आज ये बात मुझे कहनी है यहाँ पर। वैसे ये बात भी बिल्कुल सही है कि एक कदम चल के ही मंजिल पाई जाती है। वैसे ये बात भी बिल्कुल सही है कि जागने का नाम ही धर्म है। पर किस तरह, कुछ इस तरह जागना कि फिर सोना ही ना रह जाए, कुछ इस तरह जिंदगी को पा लेना कि फिर जिसमें मरना ही न रह जाए, कोई आखिरी कदम कि बस इसके बाद मंजिल है, वो आखिरी कदम ही मंजिल तक भेजेगा। लेकिन उस आखिरी कदम रखने के लिए बिल्कुल तय है कि एक कदम में मंजिल तय हो जाने वाली है, लेकिन वो आखिरी कदम है जिसके बाद मंजिल बस है ही। इसलिए कहा था कि एक कदम चले नहीं कि मंजिल आ गई, वो आखिरी कदम की बात है, लेकिन उस आखिरी कदम तक पहुंचने के लिए कई कई कदम और रखना पड़ते हैं। पर हम लोग तो बहुत होशियार लोगों में से हैं, बहुत चतुर लोगों में से हैं। हम तो यही सोचते हैं कि जब एक बात पे नहीं अड़के रह सकते हो तो क्या बोलने का मतलब है। पहले कह रहे थे कि एक कदम रखने से ये रख दिया हमने एक कदम, और वहीं की वहीं हम बैठ गए। ये हम जाग गए एक बार और बात खत्म कर दी हमने एक बार जाग करके। फिर हमने ये भी नहीं सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सो गए, अपने तो सिर्फ जागने का कहा था, हम जाग गए थे। चौकीदार रखना था किसी को रात में, चौकीदारी के लिए किसी सेठ जी को, वैसे गरीब आदमी को नहीं रखना पड़ता, सेठ जी को रखना पड़ता। पता नहीं कि हाँ ऐसा क्या रहता जिसके लिए चौकीदार की जरूरत रहती, आपको मालूम होगा। पर फिर भी कई की बार तो चौकीदारी खुद भी करते रहते हैं, पता नहीं किस चीज की चौकीदारी करते रहते हैं, ये आप जानते होंगे। तो उसको चौकीदार रखना था, उसने इंटरव्यू लिया। आजकल तो क्यून भी अगर बनता है तो बिना इंटरव्यू के थोड़ी बनता, इंटरव्यू देना पड़ता है। तो बुलाया गया उसको, एक आदमी आया, पूछा कि भले आदमी रात में जग लेते हो? हाउस आप जग लेते, दो चार मिनट की बात नहीं है, पूरी रात की बात है, फिर से सोच लो। कहना साहब रात भर जगते रहेंगे और क्या चाहते आप, यही चाहते ना? कहना बस यही चाहते, तो कहना मंजूर है। चौकीदार की चौकीदारी शुरू हो गई, बड़ा पंक्चुअल था चौकीदार, रात में ठीक 7 बजे आ जाता था और सवेरे 5 बजे तक, जब तक की प्रकाश नहीं हो जाता था तब तक जागता था। और एक रोज चोर घुसे, चोरों ने चोरी की, चोर चोरी करके वापस चले। सुबह मालिक ने बुलाया चौकीदार को, क्यों सो गए थे क्या? कहते हैं नहीं साहब, ये तो शर्त में शामिल ही नहीं था। कौन मतलब जागता रहा मैं, जागते रहे तुम, फिर भी चोर चोरी करके? कहते साहब क्या बताएं, हमारे सामने आए देखते देखते, हमारे सामने आए साहब, हमारे सामने दरवाजा खोला, हमारे सामने ताला तोड़ा, हमारे सामने माल चुराया, हमारे सामने लेके गए। कौन कहता है कि मैं सो गया? किसने आपको यह खबर दी, किसने आपको यह खबर दी कि सो गए थे? हमारे सामने सब कुछ हुआ है, शर्त तो सिर्फ जागने की थी ना, मैं तो जागता रहा। ऐसे धोखे में मत आ जाना कि पहले दिन तो कहा था कि जागने का नाम धर्म है, तो हम तो जाग गए थे, मकसद क्या था जागने का, आखिर क्यों जागे थे? ये अंधेरे में अचानक एक सत्य की किरण अगर कौंध गई थी और हमने सपने को देख लिया था, तो आखिर मकसद क्या था ऐसे देखने का? और अगर देख लिया था तो फिर सत्य हमको मिला क्यों नहीं? बात आखिर क्या हुई? बात सिर्फ यही हुई कि या तो हम फिर से सो गए, या कि हमने दूसरे दिन की बात पे गौर किया और हमेशा जागते रहे चौकीदार की तरह, लेकिन जिंदगी भर जागते अकेले रहने से कुछ नहीं हुआ। जिंदगी फिर भी लुटती रही, हम सत्य के पास फिर भी नहीं पहुंच पाए। एक कदम चला और चल के वहीं पर बैठ गए। मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। मंजिल तक पहुंचने के लिए तो कई की कदम चलने पड़ते हैं। तो आज मैं कहता हूँ, उन सब चीज़ों को भूल जाओ जो कि कल तक समझी थी। आपको उसके एक कदम आगे बढ़ना है। कोई व्यक्ति एक है जो कहता है कि कल जहाँ तक चले थे, आज वहाँ से आगे यात्रा शुरू करना। कल जहाँ तक चलकर सो गए थे, आज वहाँ से यात्रा शुरू करना। सत्य की यात्रा एक कदम चलने से शुरू तो हो जाती है, लेकिन एक कदम चल के खत्म नहीं होती। सत्य को जानने अकेले से कुछ नहीं होता, सत्य को पाना भी होता। स्वास्थ्य के बारे में आपकी क्या जानकारी है? जानकारी स्वास्थ्य के बारे में क्या जानकारी? कोई परिभाषा है आपके पास? इतने सारे डॉक्टर्स बैठे होंगे, मुझे स्वास्थ्य की परिभाषा बता दें। What do you mean by the health? क्या मतलब होता स्वास्थ्य का? बीमार नहीं होना, यही तो स्वास्थ्य। अच्छा, तो बीमारी क्यों बीच में लाते? स्वास्थ्य की बात करो, बीमारी क्यों बीच में लाते? मैं जब सत्य की बात करूं और अगर सपने को बीच में लाऊं तो घबराना नहीं। अगर सत्य की बात करते वक्त झूठ को अगर बीच में लाऊं तो घबराना नहीं। बीमारी अकेले जान लेने से कुछ नहीं होता, हर डॉक्टर जानता है। स्वास्थ्य की अकेले चर्चा कर लेने से कुछ नहीं होता, स्वास्थ्य नहीं मिलता। चलो स्वास्थ्य की चर्चा से कुछ नहीं मिलता, सत्य की चर्चा से कुछ नहीं मिलता, चलो बीमारी की चर्चा से कुछ मिलेगा। बीमारी की चर्चा करने से भी कुछ नहीं मिलने वाला। बीमारी किसको हुई है और कहाँ पर हुई है, ये अगर कुछ सोचा जाए तो एक आध कदम रखा जाए। और बीमारी के पता करने का मकसद क्या है, अगर ये तय हो जाए, काय के लिए इतना उद्यम कर रहे हो कि बीमारी खोज रहे हो कि क्या है, निदान काय के लिए कर रहे हो, स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए। और जिस क्षण ये चीज भूल जाती है, किसका ख्याल कौन सी मंजिल नजर में है, किसका ख्याल कौन सी मंजिल नजर में है, सदियां गुजर गई कि जमाना सफर में है। सदियां गुजर गई कि जमाना सफर में है। हमने तो जब से चलना शुरू किया है तब से आज तक सफर खत्म ही नहीं हुआ। आखिर बात क्या हुई, क्योंकि कौन सी मंजिल, किसकी तलाश है हमें, हम भूल गए। चलते वक्त तो याद था, जागते वक्त तो यही सोचा था कि वहां तक पहुंचना है, फिर उसके बाद जागे भले ही रहे, लेकिन मकसद याद नहीं रहा कि वजह क्या थी। तो दो बातें आज सत्य की खोज के लिए बहुत जरूरी हैं। एक तो अपन ने सीख ली है इतने दिन में कि सत्य को जानना और सपने को पहचानना बहुत जरूरी है। हमने ये जान लिया है कि सत्य क्या है, और हमने ये भी जान लिया है कि सपना क्या है। लेकिन ये सपना है कहाँ और ये सत्य है कहाँ? सपना अगर है तो हमारे अंदर है। बीमारी किसको हुई है भैया? बीमारी कहाँ हुई है? बीमारी हमारी विकृति है, और विकृति कहीं एक जगह नहीं होती। विकृति तो सारे शरीर में होती है। कहीं ऐसा नहीं होता कि जरा थोड़ी सी जगह में स्वास्थ्य रहा आए और थोड़ी सी जगह में बीमारी रही आए। बीमारी तो पूरी तरह से स्वास्थ्य को खत्म करके ही होती है। इस भुलावे में मत रहना, इस भुलावे में मत रहना कि मैं तो कहीं भीतर भीतर स्वस्थ हूँ, ये बीमारी तो बाहर बाहर आई है। मैं तो कहीं बाहर सपने देख रहा हूँ, भीतर तो कहीं सत्य मेरे हिलोरे मार रहा है सागर की तरह। ऐसे किसी धोखे में मत रहना, नहीं तो वैसे ही होगा कि एक भले आदमी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और ट्रेन रुकी, उनको सुबह मॉर्निंग में ट्रेन पकड़ना थी, शाम को 8 बजे वेटिंग रूम में वे रुक गए, रात पर सोए, सुबह से जल्दी उठे, हड़बड़ी में उठे, नहाए धोए, और जैसे ही कोट पहनने लगे तो बाजू वाले ने हाथ पकड़ लिया। अरे बड़े गलत आदमी हो, हम नहीं जानते थे आप इतने झूठे आदमी हो। बाजू वाले ने ऐसा जब उनसे कहा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने मतलब आपका? कहने भाई साहब, ये आपका कोट नहीं है, ये आप मेरा कोट पहन रहे हैं। अरे ये बात है तो सीधा सीधा कहो ना कि कोट आपका है, इसमें ये कहने की क्या जरूरत है कि मैं गलत हूँ या झूठा हूँ। बोले सुनो भाई साहब, गलत आदमी गलत कोट पहन सकता है, गलत आदमी गलत कोट पहन सकता, सही आदमी गलत कोट काहे को पहनेगा। इसलिए मैंने कहा कि अकेला गलत कोट आपने नहीं पहना है, आप कहीं गलत हो गए इसलिए आपने गलत कोट पहना हुआ है। लेकिन आज तो मुश्किल ये है कि हम भीतर से कितने भी झूठ बोलते रहें, लेकिन हम कहते यही हैं कि हम सच को जानते हैं। और सच को हमारा जानना भी बड़ा मजे का है, जरा इसको भी समझ लें फिर मकसद की बात कर लें। सत्य को जानना बड़ा मजे का है। जानकारियां कई तरह से हासिल की जाती हैं आज दुनिया में, बच्चों की तरह हासिल की जाती है, बच्चों की तरह भी जानकारी हासिल की जाती। कैसे करते बच्चे जानकारी, आपने कभी गौर नहीं किया होगा, बच्चों पे कौन गौर कर सकता है। ना समझ पर समझदार लोग ज्यादा गौर नहीं करते, लेकिन ना समझ लोग समझदारों की समझदारी से बहुत सावधान है। तो वो जो बच्चे हैं ना, ना समझ हैं, लेकिन वो कभी कभी बड़े अच्छे प्रश्न करते हैं। तो बच्चों के कैसे प्रश्न होते हैं, बड़े मजे के प्रश्न होते हैं कि बच्चे रास्ते में चले जा रहे हैं, आपका हाथ पकड़े हुए चले जा रहे हैं और जरा सा कोई फूल दिखा, पापा जी ये हरे रंग का क्या होता है ये वाला पेड़। अब आपने प्रश्न का जवाब दिया नहीं दिया, तब तक उनने कहा कि ये दिन में ही सूरज क्यों उगता, रात में क्यों नहीं उगता। आपने जवाब दिया दिया नहीं दिया, जब तक तीसरा क्वेश्चन ने कर दिया कि पापा जी पाप क्या होता, आपने जवाब ही नहीं दे पाए, तब तक उनने पूछ लिया कि सत्य क्यों होता है। ये पूछ रहे हैं, पूछने के लिए पूछना है। ये जवाब मिले तो ठीक और नहीं मिले तो ठीक, कोई प्यास नहीं है कि जान करके कुछ करना है, कोई मकसद नहीं है उनका कि जान करके कुछ करना, बस जरा सा एक अपना अभ्यास कर रहे हैं, बुद्धि का व्यायाम कर रहे हैं, प्रश्न पूछने की हमारी जिज्ञासाएं अंदर उठ रही हैं और इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं है। पहली पहली बार जब बच्चा चलता है तो एक दो कदम चल के बड़ा खुश होता है, वो सिर्फ चलने के लिए चलता है, उसकी कोई मंजिल होती क्या? उसकी कोई मंजिल नहीं होती। बिना मंजिल के वो एक कदम चल लेता है तो खुश हो लेता है। और हम लोग भी ऐसे ही लोग हैं शायद, कि जरा सी जानकारी मिलती है, जरा सा एक कदम हम चल लेते हैं और खुशी से फूल जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं कि आज तो पूरा दिन का काम हो गया, एक कदम चले। हम क्या सोच रहे थे, अब अभी तक तो हम चले नहीं पाए थे, एक कदम चल लिया हमने और हम बड़े संतोषी प्राणी हैं। इस मामले में अपने जीवन के बारे में कभी सोचना कि शायद हमने सत्य की जानकारी ऐसे ही तो हासिल नहीं की है बच्चों की तरह, कि सिर्फ जानने के लिए जान लिया हो। आज तो ऐसे ही लगता है कि हम सब सिर्फ जानने के लिए जानते हैं। एक सत्य को जानने वाला भी बिल्कुल वैसे ही जी रहा है जैसा कि एक सत्य को नहीं जानने वाला जी रहा है। जितना झूठ एक सत्य को जानने वाला दुकान पर बोल रहा है, जितनी जिंदगी में उसके झूठ भरा है एक सत्य को जानने वाले का, शायद उतने ही नहीं जानने वाले की जिंदगी में। दोनों की जिंदगी में बाहर से देख करके ये बिल्कुल पता नहीं लगाया जा सकता कि ये आदमी को सत्य की जानकारी हो गई है और इस आदमी को सत्य की जानकारी नहीं। ये आदमी को परमात्मा के बारे में कुछ जानकारी मिल गई है, इसके जीवन से कहीं नहीं झलक रहा है कि इस आदमी को कहीं भगवान का दर्शन हो गया है, इस आदमी को कहीं सत्य का दर्शन हो गया है। हमारी जिंदगी तो बस इस तरह से चलती जा रही है कि कह जरूर रहे हैं कि आई नो वेल, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सपना है और ये सत्य। इसके बाद क्या झूठ बोलना रुक गया? नहीं रुका। ऐसा जानना दो कौड़ी का भी नहीं, दो कौड़ी का, मैं तो ज्यादा बोल गया, दो कौड़ी कौड़ी की भी कीमत है। जानना तो वो कीमती है जहां की जानने के साथ जीने की प्यास हो, मरुस्थल में पड़े हो और बहुत जोर से प्यास लगी हो और तब कोई पूछे, तब आप पूछें कि पानी कहाँ है, पानी कहाँ है। प्यास लगी हुई है तब आप पूछ रहे हैं कि पानी क्या कहाँ है। प्रश्न अब इस बात का नहीं है कि पानी कैसा होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है, मिलके बनता है, कि पानी के बारे में कोई आपको जानकारी बढ़ाने के लिए आप नहीं पूछ रहे हैं कि पानी होता क्या है, पानी कहाँ है, मुझे पानी चाहिए है अभी तो, अभी तो सिर्फ एक क्षण की देर हो जाएगी तो शायद मौत बिल्कुल इंतजार में खड़ी है, जरा भी नहीं छोड़ेगी। अब तो जीवन और मरण का सीधा सीधा प्रश्न आके खड़ा हो गया है। जब जीवन और मरण का प्रश्न आकर के खड़ा हो जाए, जब संसार के सारे सपनों के बीच अपने जीवन की धारा किसी मरुस्थल में खोती भी लगे, और उस समय कोई पूछे कि कोई सागर भी होता है, तो पूछना बहुत कार्यकारी। उस क्षण पूछना कि कोई सागर होता है, नदी मरुस्थल में जाके खो जाती, मरुस्थल में जाकर के मर जाती है, ऐसे ही हमारे जीवन की धारा संसार के सपनों में जाकर के धस जाती है, खो जाती है। खोना दोनों जगह होता, सागर में जाकर के भी नदी का खोना और मरुस्थल में जाकर के भी नदी का खोना, लेकिन दोनों के खोने में बड़ा फर्क है। एक में धारा जाकर के सूख जाती, एक में धारा जाकर के मिट करके भी सागर बन जाती। मकसद क्या है आपका सत्य को जानने का? आपको सागर को जानने का मकसद क्या है? आपको कोई यात्रा सागर तक करनी भी है या नहीं करनी है, या कि सिर्फ आपको मरुस्थल में भटकना है और पूछना है सिर्फ ये कि सागर का कौन सा? ऐसे सागर का रास्ता पूछ लेने से, ऐसे सागर की चर्चा कर लेने से, ऐसे सत्य की चर्चा कर लेने से शायद किसी को कुछ नहीं मिलता। सपना टूटना चाहिए भाई साहब, सपना टूट। ध्यान रखना कि अगर सत्य की उपलब्धि हो गई है और सपना नहीं टूटा है तो वो सपने सत्य की उपलब्धि टूटी, वो फ्रॉड है, अपने साथ धोखा है। इसकी बहुत समझ के रहना। सपने का अर्थ है झूठ, सपने का अर्थ है संसार। अगर संसार नहीं छूटा है तो सत्य की जानकारी सिर्फ सिर्फ जानकारी है, तो उसे कोई मकसद पूरा नहीं था। ये बात तय मान के चलना। एक किस्सा सुना दूं, बात पूरी तरह समझ में आ जाएगी। एक बाबा जी जाते थे रास्ते से। मेरे साथ मुश्किल ये है कि जरा सी बात करता हूँ और किस्सा याद आ जाता है। अगर मैं पढ़ने वाले के साथ यही मुश्किल होती है, पता नहीं कौन सी किताब में पढ़ा था ये भी नहीं मालूम, शायद जैनेन्द्र जी की कोई संस्मरण की किताब थी, कश्मीर की यात्रा व्यात्रा, उसमें पढ़ा। बाबा जी जाते थे रास्ते से, बड़े निष्प्रह थे वे, उनने लिखा बड़े निष्प्रह थे। एक पैसा उनके पास में था, जा कहाँ रहे थे? तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। एक पैसा पास में था, तीर्थ यात्रा करने जा रहे। उनके भक्त थे सेठ, सेठ लोग ऐसे ही लोगों के भक्त हुआ है ना, जिनको कुछ देना ना पड़े। किसी सेठ की भक्ति करते तो बहुत मुश्किल होती। ऐसे बाबा जी की भक्ति करते थे वो, और उन्होंने कहा कि बाबा जी, वैसे सस्ते का जमाना था उन दिनों की, एक पैसे में एक दिन का पूरा खर्चा चल जाता था, इसलिए बाबा जी सिर्फ एक पैसा रखे थे कि एक दिन का खर्च पूरा अच्छे आराम से चल जाएगा, कल का कल से देखा जाएगा। उनके दिमाग में तो ये चीज थी, लेकिन सेठ जी के दिमाग में तो ये चीज आए तो फिर सेठ जी कैसे रह जाए? तो सेठ जी ने उनसे कहा कि बाबा जी, बहुत लंबा रास्ता है, पता नहीं आपको कितने दिन लगेंगे यात्रा में, और सिर्फ एक पैसे से क्या होता है, एक थैली रख लीजिए मेरे पास है, या सर्दियों की थैली, मैं आपको देता हूँ, आप रख लीजिए। बोले रख लूंगा, जरा एक प्रश्न है उसका जवाब दे दो, मैं तुम्हारी थैली रख लूँ, मुझे ये बता दो कि मैं कल तक जिंदा रहूँगा, बस इतना बता दो मुझे, इस बात का भरोसा दिला दो कि मैं कल तक जिंदा रहूँगा तो मैं तुम्हारी थैली रख लूँगा। बोले भले आदमी, हद करते हैं आप भी, मैं आपको कैसे भरोसा दिला दूँ कि आप कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बोले बस तो फिर बात खत्म है, आज है और आज के लिए एक पैसा पर्याप्त है, कल का कोई भरोसा नहीं, तो इंतजाम की क्या बात। लेकिन कभी देखना, क्या हम जब से पैदा हुए तब से हम मरने का सत्य नहीं जानते? अगर हम मरने का सत्य जानते हैं तो फिर कल का इंतजाम किस लिए? कभी प्रश्न चुपचाप उठा करके देख लेना अपने मन में कि जब हमें कल का भरोसा नहीं है तो कल के इंतजाम की इतनी चिंता क्यों है? बात इतनी सी नहीं हुई, बात जरा और आगे बढ़ी। दोनों जन बात कर रहे थे, बाबा और सेठ। उतने में वहीं से पास से एक साधु जी गुजरते थे। आपको कहानी लग रही? लग रही कहानी जैसी कि नहीं लग रही? हाँ कहानी जैसी भी लगना चाहिए वैसे, अगर सोचो तो कहानी है जिंदगी, शायद अगर इस तरह से सोची जाए जाए तो पूरी कहानी है, जिसका पहला पन्ना हमारे हाथ में नहीं है, जिसका आखिरी पन्ना हमारे हाथ में नहीं है, बीच के कुछ पन्ने हमारे हाथ में हैं। पढ़ना शुरू करते हैं तो मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ से शुरू हुई थी, मर जाते हैं तो मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ जाके ख़त्म हो जाएगी। ये कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। दोनों जन की बात हो रही थी उतने में साधु जी रास्ते से निकले थे, उनने सुन लिया होगा और ज़रा आगे जा कर के वो बड़े ज़ोर से हंसे उनकी बातें सुन कर के। बाबा जी ने उनको हंसते हुए देख ली और भागे भागे गए साधु जी के चरणों में गिर पड़े। बोले कि और कुछ नहीं पूछता हूँ, सिर्फ यही पूछता हूँ कि आप हंसे क्यों थे, हम लोग इतनी अच्छी बात कर रहे थे, आपके हंसने का मतलब क्या था? बोले कुछ नहीं, मैं तो सुनो ऐसा करो, जब एक दिन के लिए रख लिया है तो कल के रखने में क्या दिक्कत है? जब एक दिन के लिए रख लिया है तो कल के रखने में क्या दिक्कत है? रख लो, जब एक दिन का भरोसा है, एक पैसे का भरोसा है तो जाओ, अभी तुम्हें सत्य का भरोसा नहीं। ये उनसे भी आगे के थे और कहते हैं कि बाबा जी ने लिखा है, लिखने वाले ने, कि मैंने उस बाबा को देखा, उस बाबा ने वो एक पैसा वहीं पर गिरा दिया और साधु जी के साथ हो गया था। क्या हम सत्य को जान करके, सत्य को पाने के लिए इस तरह सारे सपनों को छोड़ करके निकल पाएंगे क्या? बस और कुछ नहीं सोचना है, आज इतनी सोचना है। आप कहेंगे सत्य धर्म पर बोलने आए थे, शायद भूल गए हों, ये तो सत्य धर्म की परिभाषा नहीं है, ऐसी परिभाषा तो हमने कहनी पड़ी कि कोई सत्य धर्म पर कहने बैठे और इतनी सारी बातें पहले कहे। अभी तो सत्य धर्म की मतलब ये है कि आप ग्रंथ वंथ नहीं पढ़ते हो, अपने जैन शास्त्रियाँ वहाँ की चीज़ें ज़्यादा पढ़ते रहते हो। जैन शास्त्र भी पढ़ता हूँ भैया, अच्छाइयों का शास्त्र पढ़ करके बुराइयाँ ढूंढ लेना, मैं समझता हूँ कि अच्छाइयों का शास्त्र पढ़ना बेहतर, बुराइयों का शास्त्र पढ़ के भी अच्छाइयाँ ढूंढ ढूंढ लेना, मैं सोचता हूँ शायद फिर भी सार्थक है। कमल कीचड़ में घुस करके मिलता है, कमल किनारे पर बैठ के कमल के गीत गाने से नहीं मिलता। इसलिए ये मत सोचना कि कहाँ से कह रहा हूँ, ये सारी परिभाषाएँ अगर कहीं से आई हैं तो वो कोई सत्य का दृष्टा ही होगा, वो कोई केवली ही होगा जिसने ये सब कहा होगा। बीच में अपना नाम डालने वाले लोग होंगे हमारे जैसे बुद्धू या हमारे जैसे बुद्धिमान लोग, हमारे जैसे बुद्धिमान लोग नाम लिख देते हैं कि ये सत्य के बाबत मेरी जानकारी, सत्य के बाबत जानकारी तो सत्य को पाने वाले की है, हमारी आपकी क्या जानकारी है? चलो सत्य धर्म की परिभाषा तो बड़ी सीधी साधी सी है, उसको भी सीख लें। सज्जन साधु पुरुषों से दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाले वचनों को छोड़ करके सत्य वचन बोलना, ये सत्य धर्म है, मोक्ष पाओ या उसमें दिखा। पर संतावय कारण वयनम वो सून सपर हित वयनम जो वद विभिक्षुतयो तत्सुधम्मे हवे सत्यम। सत्य धर्म उसके लिए होता है जो कि सज्जन पुरुषों के बीच किसी को पीड़ा न पहुंचाने वाले वचन बोलता है, उसको सत्य धर्म बोलता है। अब ये तो हो गई परिभाषा, लेकिन परिभाषा से थोड़ी ना सत्य निकल जाता। कहा ना मैंने कि फिर से कहता हूँ कि सत्य की परिभाषा अकेले से कहीं सत्य नहीं मिलता, सत्य की जानकारी अकेले से कहीं सत्य नहीं मिलता, तो कैसे सत्य धर्म की प्राप्ति होगी? इसलिए पहले कह दिया कि सत्य बोलने अकेले वाले से, सिर्फ सत्य धर्म बोलने अकेले से संबंध नहीं है, सत्य होकर के जो बोला जाएगा वही सत्य होगा और सत्य हुए बिना जो कुछ भी बोला जाएगा वो सब आंशिक सत्य होगा या ही असत्य होगा। सत्य होकर के बोलना, इसलिए पहले कोशिश करना सत्य होने की। सत्य बोलना अकेले से संबंध सत्य धर्म का नहीं है, सत्य धर्म का संबंध तो मन से भी है, बदन से भी है और शरीर से। इन तीनों में सत्य उतरना चाहिए। अकेले वाणी में सत्य उतरने से नहीं होगा, सत्य मन में भी उतरना चाहिए, सत्य शरीर में भी उतरना चाहिए, शरीर के हर व्यवहार में सत्य उतरना चाहिए। क्योंकि कोई भी आदमी इन तीन के अलग नहीं, तो ये बोलते कि मैं कहीं भीतर अलग हूँ और कहीं बाहर अलग हूँ। बाहर भीतर के दो संसार दिखते जरूर हैं, लेकिन बाहर भीतर का संसार जब एक हो जाता तभी आदमी सरल होता है। भीतर कुछ बना रहे, बाहर कुछ बना रहे, तो ये सरल नहीं, ये तो टेढ़ा आदमी है। हम तो पहले कह के आए हैं कि हमें टेढ़ेपन की बात ही नहीं करनी है, हमें तो बाहर भीतर जो एक है उसकी बात कर रहा हूँ। जो भीतर सत्य है वही बाहर सत्य बोल सकेगा, जो बाहर सत्य बोल रहा है वो भीतर कहीं ना कहीं सत्य जरूर। ये बात हमको आज बहुत अच्छे से समझ करके आगे बढ़ना। पहले नंबर का सत्य है मौन। कभी नौवीं की कक्षा में पढ़ा गया है।